संस्कृत हिंदी कोश में योग शब्द के अर्थों पर दृष्टि डाली तो वहां पर योग शब्द के 32 अर्थ दिए हुए थे। और उन अर्थों के अतिरिक्त जैन शासन में योग शब्द के कुछ अर्थ हैं, मन वाणी और शरीर के निमित्त से जो आत्मा में कंपन पैदा हो जाती है उसको भी योग कहा गया है। ध्यान की अवस्था को भी आचार्यों ने योग कहा और अष्टांग योग का वर्णन तो चल ही रहा था। कहते हैं कि जिसका आज तक समागम नहीं हुआ संसार की 84 लाख योनियों में अनादिकाल से अनंत शरीर धारण कर करके प्रत्येक प्राणी भटक चुका, लेकिन तो भी जिस परमात्मा का आज तक समागम नहीं हुआ उसका समागम भी योग कहलाता है। साधना पद्धति में योग के जो 8 अंग हैं, उसमें सबसे पहला स्थान है यम का, अर्थात पाप प्रवृत्ति का जीवन भर के लिए संकल्प पूर्वक त्याग कर देना। मन वचन का है कृत कारित और अनुमोदना से जो त्याग है, स्थूल और सूक्ष्म पापों का जो त्याग है वह तो महाव्रत की श्रेणी में आता है, जिसका पालन अथवा ये कहना चाहिए जिसको धारण करने वाले मुनिराज होते हैं। और बाकी अपनी निचली भूमिका में अणुव्रतों के रूप में इन 5 पापों को छोड़ा जाता है। अष्टांग योग में दूसरा स्थान था नियम का। नियम का सीधा सीधा अर्थ होता है संकल्प लेना, लेकिन समय सीमा बांधकर संकल्प लेना। यम याने वो संकल्प जो जीवन पर्यंत चले, और नियम याने एक समय की अवधि तक चलने वाला संकल्प। फिर तीसरा स्थान था आसन का। कोई सोचता होगा कि आसनों का क्या महत्व है। आसनों का महत्व स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में आसनों का क्या महत्व, लेकिन तो भी योग के 8 अंगों में तीसरा अंग आसन है, जिसका बड़ा महत्व है। क्योंकि शरीर यदि चंचल होगा, शरीर यदि वश में नहीं होगा तो बाकी चीजें कहां से वश में होगी। जो अपने तन पर नियंत्रण नहीं पा सका वो मन पर क्या नियंत्रण प्राप्त करेगा। इसलिए आसनों का महत्व है और ध्यान के लिए कुछ विशिष्ट आसन हुआ करते हैं। जिनके माध्यम से बिखरती हुई ऊर्जा को सुरक्षित किया जाता है। अब इसको साधारण रूप से अपन समझ सकते हैं, जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो जानते होंगे कि हर वस्तु में एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के माध्यम से कई प्रकार के वैज्ञानिक चमत्कार सामने आते हैं। बच्चों के कुछ खिलौने होते हैं कि ऐसे किसी नुकीली चीज के ऊपर कोई वजनदार चीज जो हिलने डुलने वाली है उसको बैलेंस किया जाता है और वो गिरती नहीं। वो चीज जैसे दो हाथ है किसी एक आकृति में और दोनों हाथों में कुछ वजन है और एक ऐसे छोटे से प्लेटफॉर्म पर उस आकृति को खड़ा कर दिया गया है, उसको बच्चे धकेलते हैं तो वो हाथ हिलते तो हैं लेकिन वो चीज वहां से नीचे नहीं गिरती। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के सिद्धांत पर बना हुआ खिलौना है खिलौना। खिलौनों से भी बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती है। खिलाड़ी होना चाहिए, समस्या यह है कि सब खिलौने बने हुए हैं, खिलाड़ी कोई इने गिने हैं जिस संसार के विशाल क्रीड़ा स्थल पर अपनी कुशलता के माध्यम से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। देखो फुटबॉल खेलने वालों को कितना आनंद आता है और देखने वालों को कितना आनंद आता है, पर फुटबॉल की क्या हालत होती है सोचो। माने एक गेम में कितनी लातें खानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि अपन अपनी स्थिति का विचार करें तो जब तक अपने अंदर वो कला नहीं आती, जब तक अपन खिलाड़ी नहीं बन जाते, तब तक खिलौना बनकर बार बार टूटते रहते हैं, फिर रिपेयर करना पड़ता है, फिर कोई तोड़ देता है। ये अनादि काल से चलता चला आया। तो जब अपन सही आसन में बैठते हैं, सही मुद्रा होती है शरीर की, तो जो शक्ति अनावश्यक रूप से बर्बाद हो रही है वो बर्बादी रुक जाती है। जैसे अपने शरीर का केंद्र कौन सा है बोलो, कहां होनी चाहिए अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी? नाभि। अब नाभि परमाणु होता है, वैज्ञानिकों के विश्लेषण के अनुसार जिसको परमाणु कहा गया है उसके बीच में भी एक नाभि होती है, न्यूक्लियस उसको बोलते हैं। अपने शरीर में भी नाभि का स्थान जो है वो केंद्र है। वैसे तो ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी अनेक केंद्र बतलाए गए हैं, शक्ति केंद्र है, आनंद केंद्र है, विशुद्धि केंद्र है, ज्ञान केंद्र है और दर्शन केंद्र है। जैन पद्धति के अनुसार ऐसे पांच केंद्र बताए हैं, पर क्या आपने कभी देखा कि बैठते समय कैसा महसूस होता है? कभी बैठकर देखा आपने शांति से? क्योंकि ऐसे अनेक इंसान हैं जिनका जीवन निकल जाता है लेकिन शांति से बैठने का कभी मौका ही नहीं पड़ता। शरीर से बैठ भी जाए लेकिन अंदर की व्यग्रता बनी रहती है। अब कोई सोचे कि हम थोड़ी देर बैठ करके माला फेर लें या कुछ धर्म ध्यान कर लें, लेकिन अभी समय नहीं हुआ है तो इतना समय कैसे पास करें। जैसे मान लो किसी को शाम को 6 बजे बैठना है और अभी 6:45 हो, तो उसको चिंता लग जाती है कि 15 मिनट कैसे निकाले। और फिर वो कोई तरीका निकाल ही लेता है क्योंकि मन बड़ा चालाक है, देखता है इधर उधर कोई ऐसा इंद्रियों का विषय मिल जाए कि जिसमें इतने 15 मिनट निकल जाए। क्योंकि खाली बैठना सबसे बड़ी समस्या है मनुष्यों के सामने। टीवी के सामने बैठा हो तो फिर बैठे रहेंगे, लेकिन खाली बैठा हो तो फिर पसीना आ जाएगा। तो देखता है कि एक अखबार सामने पड़ा हुआ है, सोचता है कि सुबह समय नहीं मिल पाया था, अभी देख लो। देखता है वो अखबार को और देखते देखते थोड़ा सा उसमें तल्लीन भी होता है, लेकिन साथ में ये भी विकल्प है मन में कि 6 बजे धर्म ध्यान करना है। तो फिर पढ़ते पढ़ते जब मन लगता है तब 6 बज जाते हैं और फिर अखबार उसको छोड़ना पड़ता है और बैठता है। अखबार बाहर से तो छूट जाता है लेकिन 6 बजे के बाद अंदर की क्या दशा होती है इससे आसानी से पहचाना जा सकता है कि अभी कौन सा ध्यान चल रहा है, अखबार का या धर्म। कहीं स्कूटर है, एक्सीडेंट दिखाई देता है, आंख बंद है, और कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा आ जाता है, कहीं क्रिकेट मैच आ जाती है, कहीं और कुछ दिखाई देता है, और जिसके जो विषय है उसको वो विषय दिखाई पड़ते हैं। आप कभी शांति से बैठकर देखिएगा कितनी देर आप बैठ पाते हैं, अथवा वैसे ही बैठ जाओ और देखो क्या होता है। आप एक तरफ झुक कर बैठेंगे तो थोड़ी देर बाद लगेगा कि अब इस तरफ थोड़ा झुक लो। यदि आप टेढ़े बैठेंगे तो लगेगा कि अब सीधे बैठ जाएं। यदि सीधे बैठे होंगे तो लगेगा कि अब थोड़ा टिक जाएं। पद्मासन लगाकर बैठेंगे तो लगेगा कि पैर थोड़े ढीले कर लें। माने कुछ ना कुछ अंदर चलता रहेगा, वो स्टिलनेस जिसको बोलते हैं, निश्चलता, वो नहीं आ पाएगी। इसका कारण क्या है? तो जब शरीर के केंद्र में यानी नाभि में गुरुत्वाकर्षण केंद्र आ जाता है सही आसन के माध्यम से, तब शांति से बैठने में बहुत सहूलियत होती है। आप गरुड़ आसन में खड़े रहोगे तो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि हम बदल लें आसन, या और कोई कठिन आसन लगाकर बैठोगे तो भी तसल्ली नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसी मुद्रा में आप बैठेंगे, इसीलिए ध्यान की मुद्राएं अलग प्रकार की बतलाई गई हैं, तो साधना के अभ्यास में उन मुद्राओं का भी आलंबन साधक को लेना पड़ता है। और जब वह अभ्यस्त हो जाता है तब की स्थिति जुदी है। कोई ऐसा मत समझना कि बस उन्हीं मुद्राओं के द्वारा जीवों को मोक्ष प्राप्त होता होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जिन्होंने मन को शांत रखने की कला प्राप्त कर ली, उनके लिए इन आसनों का भी कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो आसनों से ऊपर उठ चुके हैं और ऊंची भूमिका में प्रविष्ट हो चुके हैं। आसन भी एक भूमिका है। फिर आसन के पश्चात चौथा अंग था प्राणायाम, सांस लेने की कला। कहां से सांस लेना, कैसे लेना, कितना लेना, आप देखिए। बैठे बैठे क्या कभी आप अच्छे ढंग से भर कर सांस भी लेते हैं? पता चलेगा कि हम सांस भी ढंग से नहीं ले पाते, माने इतनी अधिक व्यग्रता है कि कोई काम ढंग से हो नहीं पाता। सांस लेते समय माने उसमें भी बहुत सारी अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं। एक तो सामान्य रूप से ये है कि आवाज नहीं आनी चाहिए, और आवाज अभी तो आप नहीं समझ पाएंगे, ये सब आवाजें हैं यहां पर। कभी सन्नाटे में बैठ के देखना कि सांस लेने की आवाज आती है कि नहीं। अब इसके लिए कान भी सही होने चाहिए ना, देखिएगा सांस की आवाज ना आए, क्योंकि जब सांस की आवाज आती है तब भी शक्ति व्यर्थ में खर्च हो जाती है। अब ये व्यर्थ में खर्च होने वाली शक्ति को संचित करके योग को आगे बढ़ाने की बात है, तो सांस को पूरा भीतर तक भरना और फिर उसको सहज रूप से छोड़ना। भरते समय भी ऐसा नहीं भरना कि फिर दूसरी सांस लेने में परेशान हो जाओ, एक बार में इतनी भर ली कि बस फिर हांफने लग गए, तो वो भी तनावपूर्ण न हो। अच्छे ढंग से सांस अंदर लेना, फिर छोड़ना, आवाज भी ना आने देना। तो इस प्रकार आप बैठेंगे कुछ समय तक एक मुद्रा में, तो फिर आपको एक हल्कापन महसूस होगा। ये पहचान है हमारी, आसन सही है या गलत इसकी क्या पहचान है, कि आसन मानकर थोड़ी देर बैठने पर, शांति से सांस लेने और छोड़ने पर यदि एक हल्कापन महसूस हो तो समझना चाहिए कि ये आसन आज ठीक लग गई है। और यदि आकुलता होने लग जाए कि कांटा बहुत देर से खिसक रहा है, ऐसा लगने लग जाए, तो समझना चाहिए कि अभी मेरी प्रक्रिया में कोई गलती हो रही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और इसके आगे की स्थिति है प्रत्याहार। प्रत्याहार माने इंद्रियों को जीत लेना। इंद्रियों के विषय सामने हैं लेकिन फिर भी अंदर कोई खलबली नहीं है। आचार्य श्री इसका उदाहरण देते हैं कि शक्कर से भरी हुई चम्मच मुंह में रखी हुई है 5 मिनट के लिए, लेकिन फिर भी बाहर सूखी निकलती है, गीली नहीं होती वो शक्कर। रसना इंद्रिय जय। प्रत्याहार, प्राणायाम के द्वारा जो काम कई वर्षों की साधना के उपरांत संपन्न हो पाता है, प्रत्याहार के द्वारा वो काम अंतर मुहूर्त में हो सकता है, माने बहुत कम समय में। पर प्रत्याहार की अवस्था को प्राप्त करने वाला तो बिरला ही होगा। फिर धारणा है। वैसे तो बहुत सारी चीजें चलती ही रहती अंदर, और उन धारणाओं के संस्कारों के कारण सपने में भी बहुत सी चीजें दिखती है। जब कोई इष्ट वस्तु नहीं मिलती और उसकी तीव्र लालसा रहती है कि मिल ही जाए, तो एक आध दिन सपने में वो मिल भी जाती है, फिर आंख खुलने के बाद पता चलता है कि कुछ नहीं था। लेकिन ये सब संस्कार और धारणाएं जागृत और सुषुप्त अवस्था में काम करती रहती हैं। लेकिन यहां तो साधना के क्षेत्र में कुछ भिन्न प्रकार की धारणाओं का आलंबन लेकर मन को प्रशस्त बनाया जाता है, स्वस्थ बनाया जाता है कहना चाहिए, क्योंकि मानसिक रूप से तो प्राय सब बीमार मिलेंगे आपको। शरीर भले किन्हीं का स्वस्थ हो, शरीर भी 10-12% लोगों का स्वस्थ कहलाने योग्य है, बाकी तो प्राय दवाइयां लेते ही रहते हैं।